नमस्ते सर, वेलकम बैक।
नमस्कार।
और हमने जैसे प्रॉमिस किया था कि सेकंड पार्ट में हम प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी पे डिस्कस करेंगे। आपने उनके साथ 1999 से 2004 पूरी टर्म में काम किया, तो आपका एज अ होल एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ, उनकी पर्सनैलिटी? आप डेप्यूटी सेक्रेटरी थे, तो आपने तो बेसिकली लिटरली एक सभी चीज़ों पे काम किया है, नॉट जस्ट फॉरेन अफेयर्स रिलेटेड बट डोमेस्टिक अफेयर्स आल्सो, इकोनॉमिक पॉलिसी आल्सो। तो बहुत हैपनिंग वो 6 साल 5 साल थे, तो आपको कैसा लगा काम करके, किस तरीके की पर्सनैलिटी थे वो?
मैं निजी सचिव था प्रधानमंत्री वाजपेयी का 5 साल, तो मेरे लिए ये अनुभव सबसे अनोखा था अपने पूरे करियर में। पूरे 35 साल जो मैंने भारत सरकार में गुजारे, उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे सीख देने वाला और सबसे मैं कहूँगा ज़्यादा रोचक पीरियड यही था मेरे पूरे करियर में। तो इसमें मौका मिला मुझे बहुत ही करीब से देखने का भारत की राजनीतिक प्रक्रिया को, और राजनीतिक प्रक्रिया का जो इंटरसेक्शन होता है सिविल सर्विस से, और किस तरह से नीति बनती है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो चाहे डिफेंस पॉलिसी हो, तो उसको करीब से देखने का मौका मिला।
तो सबसे इंटरेस्टिंग जो इवेंट था या हैपनिंग चीज थी जो आपको लगी, जो आपने बहुत कुछ सीखा उससे, और या फिर बहुत रोचक लगी आपको, इन 5 सालों में क्या था वो उनके साथ काम करते हुए?
देखिए, बहुत से संदर्भ थे इसमें, बहुत बहुत कुछ हुआ।
इस पे तो एक पुस्तक लिखनी चाहिए।
बिल्कुल, इस पे एक पूरी पुस्तक में कहना पड़ेगा। मगर वाजपेयी जी का पाकिस्तान के साथ एक अनोखा संबंध था, और वो ये चाहते थे कि किसी तरह से प्रयास जरूरी है कि इस समस्या को सुलझाया जाए, कि इससे वो 1978 में भी जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री के रूप में गए थे, और जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनकी 13 महीने की सरकार में भी 2 इस तरह के फैसले थे जो इसी बारे में पाकिस्तान के संबंधित थे। एक था न्यूक्लियर, 1998 में फैसला जो भारत को न्यूक्लियर टेस्ट हमने करे, और दूसरा एक जो पहल करी उसके तुरंत बाद उन्होंने लाहौर जाने की, लाहौर दोस्ती का हाथ लेके लाहौर जाने के लिए, जिससे वो भारत के न्यूक्लियर बनने से संबंधित था मगर एक तरह की नई पहल थी नवाज शरीफ के साथ, कि क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, इन रिश्तों को सुधार सकते हैं। तो पाकिस्तान के साथ उनका प्रयास जो था वो मैंने ध्यान से देखा, और फिर 2004 में 6 महीने पहले उनकी सरकार जो उसका टर्म ख़त्म हुआ मई में, उसमें जनवरी में इस्लामाबाद गए और इस्लामाबाद रेजोल्यूशन साइन किया, और वो भी इस्लामाबाद डिक्लेरेशन भी एक तरह से एक लेगेसी छोड़ने का प्रयास था, एक शांति अमन की लेगेसी। और उसके बाद 3 साल हमें कम से कम मिले जिसमें मनमोहन सिंह ने उस लेगेसी को आगे लेके गए, और शांति अमन, काफ़ी शांति इस रिलेशनशिप में आई, संबंधों में काफ़ी सुधार आया, और एक सीख मिली कि किस तरह से इन रिश्तों को हम मैनेज कर सकते। तो वो इन रिश्तों पे स्पेशल उनका फोकस था कि किस तरह से भारत पाकिस्तान रिश्तों को सुधार सकते।
सर, जब हाईजैकिंग हुई काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस का, शायद जो
इंडियन एयरलाइंस का
IC 814, तो जब आपने उनको बताया ये खबर, तो उनका क्या रिएक्शन था, और उसके बाद क्या क्या प्रोसेस हुआ? और मतलब उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें उसमें कही, मतलब मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि एग्जैक्टली जब आपने उनको बताया तो उनका क्या रिएक्शन था, और ऐसी स्थितियों में जब आप देखते हैं रिस्पॉन्स लीडर्स का, हाउ दे बिहेव, वो काफ़ी कुछ बताता भी है।
उस समय मैं उसी महीने प्रधानमंत्री कार्यालय में मैंने ज्वाइन किया था 1999 में, या प्रधानमंत्री के निजी ऑफिस में ज्वाइन किया था नवंबर में, और अगले महीने दिसंबर में यह हादसा हुआ। तो उस समय वाजपेयी जी एक लोकल टूर पे गए थे असम, मैं उनके साथ था, और जब वो वापस लौटे तो एक 15 मिनट की ड्राइव होती है एयरपोर्ट से लेके रेस कोर्स रोड जहाँ पे उनका निवास था। तो उस बीच मुझे कॉल आया एक कोलीग का कि ये हादसा हुआ है, प्रधानमंत्री जी को तुरंत बताइए। और वहाँ पे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा तैयार हैं, इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो गई है कैबिनेट की, एक जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम थी वो तैयार है। तो मैंने उनको बताया कि हाईजैक हुआ है, नेपाल से प्लेन आ रहा था, और थोड़ा विस्तार में बताया। उन्होंने पूछा कि और कुछ है, मैंने बोला नहीं, तो उन्होंने बोला वो, और फिर खिड़की से थोड़ा बाहर देख के सोचने लगे। क्योंकि उन इन रिश्तों पे उनकी नज़र थी, और उनको मेरे ख्याल से उनको साफ था कि ये शायद पाकिस्तान का हाथ होगा इसमें। तो खैर जब हम पहुँचे तब ब्रजेश मिश्रा जी ने तुरंत उनको ब्रीफिंग दी और बातचीत करी कि प्लेन किधर है, क्या है, सारे विकल्पों की फिर बात होना शुरू करी, और अगले कुछ दिन उसी क्राइसिस में।
जब पार्लियामेंट अटैक हुआ तब आपने टीवी पे देखा कि जो पार्लियामेंट चल रही थी वो स्थगित हो गई है फॉर वट एवर रीज़न। तो जब वाजपेयी जी वहाँ से कार में बैठ के निकल ही रहे थे तो आपने कार को रुकवाया, और तब तक आपको पता नहीं था कि पार्लियामेंट पे अटैक हो चुका है। तो तब आपने देखा वो चीज़ कि उनको बताया आपने, तो वो भी एक बहुत स्ट्रेंज इंसिडेंट है कि उसकी वजह से वो वहाँ पे जा नहीं पाए, और शायद अगर वो निकल जाते 5 मिनट पहले या तो वो हो सकता है तो उस क्रॉस फायरिंग में, या कुड हैव फेस्ड दैट एनकाउंटर। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये कहानी।
हाँ, तो ये बहुत ही रोचक घटना है। इसमें क्या हुआ था कि दिसंबर 13 का दिन था 2001, और प्रधानमंत्री को जाना था उनके शेड्यूल के अनुसार 11 बजे संसद भवन, वहाँ पे पार्लियामेंट, वहाँ पे राज्यसभा या लोकसभा में वो बैठते। और क्या हुआ उस दिन कुछ विलंब हो गया, तो 11:05 या 11:05 के कुछ बाद वो वहाँ से जाने लगे। और मैंने हमारी निजी कार्यालय में प्रॉब्लम ये थी कि कुछ फाइलें पेंडिंग हो जाती थी पार्लियामेंट के समय, और पूरा प्रयास रहता था कि ज़ीरो पेंडेंसी करें। तो प्रधानमंत्री जी को रोक के हम चाहते थे 2 घंटे वो फाइलें क्लियर करें, जिससे कि फाइल सारी कुछ पेंडिंग ना रहे। और तो 11 मैंने टीवी खोला, मैंने देखा वो नहीं गए, तो टीवी ऑन था, और 11:05 तक साफ हो गया था कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों एडजर्न्ड हैं, स्थगित। तो मैंने उस समय जैसे ये खबर आई, प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय निकलना शुरू हो गया था। और मैं भाग के गया और हाथ हिलाया और सिक्योरिटी वालों को बोला कि रोकें, कॉन्वॉय रुका कुछ 10-15 मीटर दूर। और मैंने दरवाज़ा खोला और प्रधानमंत्री को कहा कि सर वो दोनों हाउस तो एडजर्न हो गए हैं, तो क्यों ना आप यहीं पे रहें निवास पे, क्योंकि फाइलें बहुत बची हैं। तो वो हंसे कि देखो इसको बस फाइलों की चिंता है, इसीलिए अपना संसद भी नहीं जाने दे रहे। तो बोला अच्छा चलो ठीक है। तो कॉन्वॉय पूरा घूम के वापस आया, उनमें फिर काम उन्होंने करना शुरू किया। मेरे कॉलीग थे वो, उन्होंने अपनी फाइलें दिखा रहे थे, और इससे पहले कि मैं अंदर जाता एक कॉल आई हमारे संसद का जो कार्यालय था प्रधानमंत्री ऑफिस का, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला कि सर यहाँ फायरिंग हो रही है, आप प्रधानमंत्री को बिल्कुल नहीं लाए, सब लॉक हो गया, टीवी पे भी आ रहा है। तो टीवी ऑन किया,
थैंक्स फॉर टेलिंग सो अर्ली,
टीवी पे ऑन किया तो टीवी पे कुछ ब्रेकिंग न्यूज भी शुरू हो गई थी. तो मैं भाग के गया अंदर, प्रधानमंत्री जी को कहा कि सर टीवी देखते हैं, कुछ अटैक हो गया है पार्लियामेंट पे. और वो बाहर आए और उसके बाद फिर फोन पे बातचीत करना शुरू करी. अडवाणी जी से बात हुई जो पार्लियामेंट के अंदर थे, और अलग अलग लोगों से बातचीत करी इस स्थिति में क्या करना था इस बारे में. तो बाद में भारतीय इंटेलिजेंस और यूएस इंटेलिजेंस दोनों से जो खबरें मिली वो ये थी कि शायद जो टेररिस्ट थे उनका ये भी एक इंटेंशन था कि भारत के प्रधानमंत्री को भी कोशिश करें हॉस्टेज लें.
अच्छा.
इस बात वो क्योंकि वो भी पार्लियामेंट आ रहे थे. तो एसपीजी का एक दल मेरे पास आया मुझे धन्यवाद देने के लिए. तो मैंने बोला मुझे कोई जानकारी नहीं थी, मैं तो केवल अपनी फाइलें कराने के लिए प्रधानमंत्री को रोक रहा था. तो उस समय ये प्रधानमंत्री के लिए, जैसा आप जानते हैं, वाजपेयी के लिए संसद बहुत क्लोज था. इट वॉज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट. ही वॉज अ पार्लियामेंटेरियन ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग.
57 से ही थे,
57 से. और पार्लियामेंट को वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे. मतलब ये बहुत गहरी उनको चोट लगी कि इस तरह से पार्लियामेंट पे अटैक.
सर जब ये इस तरीके की बड़ी घटनाएं हुई, हमने देखा कि एनडीए की दूसरी जो पारी है ये अभी जो चल रही है, अभी तो तीसरी कह सकते हो, लेकिन जो मोदी सरकार के अंदर जैसे जो अटैक्स हुए, उरी का हुआ, उसके बाद पुलवामा वाला हुआ, वहाँ पे रिस्पॉन्स एक आया. हम जब कॉन्ट्रास्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के रिस्पॉन्सेज का, तो हम करते हैं मनमोहन सिंह की 2008 के बाद जो इतना बड़ा हमला हुआ हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया. लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जैसे जो वाजपेयी जी के अंडर में ये हुआ हाईजैकिंग, इतना बड़ा इशू था, और इसके बाद पार्लियामेंट पे अटैक, तो हमने वो उस तरीके का मुंह तोड़ जवाब देना या मिलिट्री रिस्पॉन्स वो नहीं आया, तो उसका क्या कारण था? क्योंकि आप तो सभी डिस्कशंस में रहे होंगे और ये ऑप्शंस भी डिस्कस हुए होंगे कि क्या करना चाहिए, हमको मिलिट्री वाइज रिस्पॉन्ड करना चाहिए या नहीं. तो क्या थिंकिंग थी वाजपेयी जी की खुद भी, या कोई हॉक्स भी थे उसमें? जैसे बोला जाता है कि आडवाणी जी वो थे उसमें, उनका छवि भी इस तरीके का बनाया, लेकिन क्या थिंकिंग चल रही थी सरकार में? हालांकि आप कह सकते हो कि 2001 में 2002 में फिर ऑपरेशन पराक्रम हमने एज अ रिस्पॉन्स किया, बट वो एक मिलिट्री मोबिलाइजेशन हुआ, उसके बाद वो रिस्पॉन्ड कुछ नहीं हुआ. तो आपके हिसाब से वो आपने देखा सब कुछ, तो क्या थिंकिंग थी उस सरकार में? क्योंकि वो सरकार बहुत मिलिट्री वाइज बहुत वीक देखी जाती थी, और ये एक उसके खिलाफ भी काम किया. मैं तो सोचता हूँ कि 2004 में हारने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा होगा कि जो नेशनलिज्म की और उस तरीके की जो इमेज बनाई थी बीजेपी की, वो उसके दे कुडंट लिव अप टू दैट.
नहीं, तो इससे मैं पूरे तरह से नहीं सहमत हूँ, क्योंकि अगर आप देखें जो भी फैसले होते हैं उस समय की रियलिटीज को भी आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा. तो अगर आप देखें 1998 से क्या रियलिटीज थी जो वाजपेयी सरकार को फेस करनी पड़ी, सबसे पहले उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया 1998 में, विच वॉज द न्यूक्लियर टेस्ट. और इसके कारण एक बहुत ही दुनिया भर में चिंता भी शुरू हुई कि इंस्टेबिलिटी ना आ गई हो साउथ एशिया में. तो ये आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा शुरू में. तो इसका मैंने काफ़ी विस्तार में चर्चा करी है एक किताब में. 1998 जब हम न्यूक्लियर हो जाते हैं, उसके बाद ये सब फैसले जो हम लेते हैं वो एक न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में लेते हैं. और जो प्रधानमंत्री जिसका फैसला था न्यूक्लियर जाने का, वो एक न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबल प्रधानमंत्री होना चाहते थे. तो 98 में जब टेस्ट होते हैं, उसके बाद 99 में जब कारगिल का हमला होता है, तब फैसला होता है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करेंगे. और ज़्यादातर ये रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया जाता है कि हम लाइन नहीं क्रॉस करते। क्यों नहीं क्रॉस करते? क्योंकि उस समय रेड लाइंस न्यूक्लियर साफ नहीं थी कि क्या, दोनों देश हाल ही में न्यूक्लियर हुए थे, तो उस समय एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि ये इसको अपसेट ना करे। पाकिस्तान ने जो गलत फैसला किया, मुशर्रफ ने, जो पाकिस्तान में भी माना जाता है कि बहुत बड़ी गलती करी, कि कारगिल का हमला किया इन अ न्यूक्लियर एनवायरनमेंट और बिना कंसल्टेशंस किए, तीन चार उनके कुछ दोस्त थे उनके साथ एक क्लीक ने मिलके ये फैसला किया। तो 99 में ये रियलिटी थी और 2001 में जो टेररिज्म हुआ वो भी एक तरह से अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला था। तो भारत को ये भी साफ था कि 9/11 हुआ था, US ट्रूप्स आ गए थे अफगानिस्तान में, वहाँ पे एक युद्ध शुरू हो गया था जो भारत के हित में था क्योंकि वहाँ पे टेररिस्ट को क्लीन अप किया जा रहा था।
और भारत ये भी तो देख पा रहा था कि जो US मिलिट्री है वो पाकिस्तान मिलिट्री के साथ काम कर रही
वो,
है
वो साथ थी, मगर उसके अलावा ये इसका फायदा पाकिस्तान मिलिट्री उठा रही थी। और उसके अलावा ये भी था कि तब भी न्यूक्लियर रेड लाइंस साफ नहीं थी। इस संदर्भ में ये फैसला होता है, इसे आप आज भी अंकलन कर सकते हैं, आप जज कर सकते हैं कि हम एक क्रेडिबल थ्रेट ऑफ फोर्स रखेंगे, ऑपरेशन पराक्रम चलाएंगे और इससे एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव भी करेंगे दुनिया भर में कि पाकिस्तान की तरफ से कितना आतंकवाद आ रहा है। मगर ये भी साफ था कि पाकिस्तान जुड़ गया था US के साथ वॉर ऑन टेरर पे। तो इस संदर्भ में ये फैसले होते हैं। और 2003 में फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और 2004 में फिर इस्लामाबाद डिक्लेरेशन आता है कि टेररिज्म को किसी तरह समाप्त किया जाए। मगर मेरा ये मत होगा कि 2008 तक ये सारे रेड लाइन्स साफ हो गए थे, पता चल गया था हमको क्या कहाँ है। और 2008 में जब इतना बड़ा हादसा होता है तब आप हाल ही में न्यूक्लियर नहीं गए, तब आपका कंसिडरेशन था कि आप US के साथ एक न्यूक्लियर ट्रीटी कर रहे हैं, तो आप चाह रहे थे कि उस पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े जो आप एक्शंस लेते हैं उसका। तो संदर्भ फिर बदला। तो मेरा मत है कि 2001 में ऑपरेशन पराक्रम आपने किया, आपने ये फैसला किया, 2008 में जो आपने फैसला किया वो शायद आपने गलत किया कि उस समय शायद फोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए था, उस या बालाकोट या उरी की तरह से के कदम उठाने चाहिए थे। तो और एक कदम अगर आप इस आर्ग्यूमेंट को आगे ले जाएं तो मैं तो कहूँगा कि 1980s में जो आपने पंजाब में फेस किया, अगर आप ठोस मिलिट्री कदम उठाते तो शायद वो रोक सकते थे। और शायद 1990 के दशक में जो आप कश्मीर में आपने फेस किया वो नहीं हमको मिलता।
वो कैसे सर?
अगर 1980 में आप बालाकोट की तरह कोई स्ट्राइक करते कि आप अगर
बट कुछ प्रूफ तो शायद उतना नहीं होगा ना। इट्स नॉट एन इवेंट। फॉर एग्जांपल पुलवामा एक इंसिडेंट है, एक टेरर इंसिडेंट है, लेकिन अगर आप 80s में जाएं वो प्रोसेस है, वो रोज हो रहा है।
बट दैट्स अ गुड पॉइंट, बट इवन द प्रोसेस यू हैव टू काउंटर किसी तरह से। आप कोई एक ले लें कि आपने इस इलाके में आपने इतने टैंक भेजे या इतने
आर्म्स भेजे
और आपने जवाब दिया उन आर्म्स कहां से आए उस जगह पे। तो जो भी है विथ परफेक्ट हाइंडसाइट 75 साल की आप कहानी को पूरा रन करें फ्लैशबैक में, तो मेरा मत होगा कि एज सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इन द 80s हमें कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए थे पंजाब में जो पाकिस्तान ने किया उसके विरुद्ध, 90 के दशक में कश्मीर में हुआ उसके विरुद्ध। तो उससे हम शायद जो 2000 में पूरे भारत में आतंकवाद फैला उसको हम शायद रोक पाते अगर हम कुछ ठोस कदम उठाते।
तो एक वीक स्टेट की जो इमेज भी बन गई हमारी, कम से कम पाकिस्तान के लिए तो वो बनी गई, क्योंकि जब रुबैया सैयद का जो किडनैपिंग हुआ था उसमें भी हमने वो डिमांड्स मान ली और बहुत आसानी से वो छोड़ दिया।
तो ये सारे जो बातें हुई, अगर भारत कुछ ठोस और स्ट्रॉन्ग कदम उठाता इनके खिलाफ तो शायद कहानी कुछ अलग हो सकती थी। और इसमें स्टेट की कैपेसिटी की भी आवश्यकता है और विल की भी आवश्यकता है। और मेरा ये अब मत होगा कि ये पूरी कहानी देखकर कि अगर हम कोई ठोस कदम उठाते मिलिट्री के उस समय, क्यों तो पाकिस्तान की आर्मी के लिए इसका दाम बढ़ता, द कॉस्ट वुड हैव इंक्रीज्ड फॉर लो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉरफेयर इन पंजाब इन कश्मीर जो हुआ। तो अगर उनको पता होता कि देखिए अगर हम ये करेंगे प्रॉक्सी वॉरफेयर और एक थ्रेशोल्ड ऑफ टॉलरेंस भारत का उसको हम पार कर देते हैं, तो भारत ठोस कदम उठाएगा जिससे हमें तकलीफ हो सकती है, एक कॉस्ट होगा आर्मी को, युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब इस समय पाकिस्तान को लगा ये लो कॉस्ट ऑप्शन है, जैश ए मोहम्मद आप तैयार करिए, लश्कर ए तैयबा तैयार करिए, उनके 16 17 18 साल के लड़कों को 15 दिन ट्रेनिंग दे के और दौरा ए खास और दौरा ए आम, उनमें आर्म्स की ट्रेनिंग दे के आप भेज दें उनको और वो जो खुराफत कर सकें करते रहें। मगर अब ये साफ हो गया था, साफ हो गया है कि ये आप नहीं कर सकते।
इसीलिए तो जो टिप मिली आपको ISI ने जो दी, वो पुलवामा में दोबारा वो नहीं चाहते थे कि हमला हो, क्योंकि उनको आशंका थी कि अगर हम पुलवामा हुआ दोबारा तो दोबारा बालाकोट टाइप का कुछ ऑपरेशन होगा। तो अगर वो पहले कर देते, इतने साल पहले अगर हम कर देते 80s में जैसा आपने बात किया, तो हो सकता था कि जितना ब्लडशेड जो 1000 cut का पॉलिसी उन्होंने अपनाया, हो सकता था कि शायद वो नहीं अपनाते।
बिल्कुल बिल्कुल। तो अब विद परफेक्ट हाइंडसाइट आपको ये पॉइंट है कि शायद आपको ये करना चाहिए था, आपने अब किया, बहुत अच्छा किया, मगर ये शायद पहले होता, ये उस इस बात का भी परिचायक है कि शायद पहले करते तो ये एक इफेक्टिव नीति रहती। मगर और भी कंडीशंस रही, न्यूक्लियर हम हुए तो वो भी आप फैक्टर इन करें सारी कंडीशन।
सर आगरा समिट की जब बात होती है तो बोला जाता है कि जो उसका रेजोल्यूशन नहीं हो पाया और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, उसका कारण ये था कि, और ये मुशर्रफ ने भी शायद बोला था कि हम, मतलब जो वाजपेयी जी और मुशर्रफ दोनों ही के हाथ में नहीं था, उनके ऊपर कोई था जिसने ये सक्सेसफुल नहीं होने दिया। और वो बात आती है कि आडवाणी जी ने कुछ ना कुछ, वो क्योंकि हॉक थे, उनकी इमेज ऐसी थी और वो नहीं चाहते थे कि आगरा समिट सक्सेसफुल हो। तो क्या कारण था कि आगरा समिट, जो मुशर्रफ आए आगरा में और मीटिंग्स हुई, आपने तो बहुत क्लोजली उन सबको देखा, उन पार्टिसिपेट भी किया उन चीज़ों में, तो आपके हिसाब से क्या असली कारण क्या था कि आगरा समिट सक्सेसफुल नहीं हो पाई?
आगरा में मैं था और ये मैंने काफ़ी पास से देखा। मेरे ख्याल से ये एक पाकिस्तान में बयानिया बनाया गया और जो भारत में भी पिकअप हुआ, ये ठीक बयानिया नहीं है कि भारत में हॉक्स थे, वाजपेयी जी के ऊपर कोई था, ये ठीक नहीं। असली कारण आगरा के फेलियर का था मुशर्रफ्स ओवररीच ऑन कश्मीर, क्योंकि वो चाहते थे, उनका ये असेसमेंट था कि मैं कश्मीर को सुलझा दूंगा और मतलब कश्मीर को के मुद्दे को जोड़ दूंगा। और वो एक ड्राफ्ट तैयार करके लाए थे कि भाई हम और सब मुद्दों में आगे बढ़ेंगे, मगर सब डिपेंड करेगा कश्मीर में कितनी हमारी प्रोग्रेस होती है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे हम ट्रेड की बात करें या किसी और मसले की बात करें। दूसरी चीज़, वो टेररिज्म के बारे में, आतंकवाद के बारे में मानने को नहीं तैयार थे और नोट में नहीं लाने को तैयार थे कि आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है और उसको रोका जाएगा। तो इन दो कारणों से फेल हुआ। ये ठीक है कि वाजपेयी जी का इस तरह का नेचर था, चरित्र था कि वो स्माइल करते थे, बोलते थे हाँ सोचेंगे समझेंगे इस तरह की बात, और जब फैसले होते थे तो आगरा में पूरी हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी थी, वाजपेयी जी थे, अडवाणी जी थे, मुरस अली मारन साहब थे, तो काफ़ी सब मेंबर्स वहाँ पे थे, एक साथ बैठते थे। और कुछ कहा सुनी हुई, उसमें बातचीत हुई कि किसी तरह से एक ड्राफ्ट बना दें लंबा चौड़ा घुमा के कि ये करें, मगर जो पाकिस्तान मुशर्रफ की इंसिस्टेंस थी कि सब चीज़ों को कश्मीर से जोड़ा जाए, वो असली कारण था, ये आगे नहीं बढ़ा। अडवाणी का इसमें रोल इतना ज़्यादा नहीं था, वो भी एक साथ बैठते थे सबके, और अडवाणी और जसवंत सिंह ने अपनी किताब में भी इस बारे में लिखा है, अडवाणी जी ने भी अपनी किताब में इस बारे में लिखा है। तो मेरे ख्याल से असली कारण मुशर्रफ की गलतियां थी और ये गलतियां सुधारी बाद में, इसलिए हमारे बाद में अग्रीमेंट्स बन पाए। 2001 में वो तो टेररिज्म मानने को तैयार नहीं थे, कश्मीर को जोड़ना चाहते थे एज अ कंडीशन फॉर एवरीथिंग एल्स, मगर 2002 में उन्होंने कहा कि टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान विल नॉट बी यूज्ड फॉर टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया, और 2004 में उन्होंने बोला कि द टेरिटरी ऑल टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान विल नॉट बी यूज्ड फॉर टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया। मतलब कि POK में से भी हम आपके खिलाफ आतंकवाद नहीं फैलाएंगे। यह अलग बात है कि वो सब 2008 तक भूल गए थे, मगर इस तरह का जो ड्राफ्ट चल रहा था आगरा में वो हमारी लीडरशिप के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। और गलती हाइंडसाइट में ये हुई थी कि आगरा के पहले खास प्रिपरेशन नहीं हुआ। फैसला हुआ कि चलो बुलाते हैं जनरल साहब को, देखते हैं ये नए जनरल आए हैं पाकिस्तान में क्या इनका माइंडसेट है। तो उससे पहले अगर एक बैक चैनल खुलती, उससे पहले अगर डिप्लोमेसी चलती, उससे पहले ये ड्राफ्ट्स आगे पीछे जाते तो शायद हम कहीं पहुंच सकते थे, मगर ये नहीं हुआ। और ये गलती हुई कि एक ड्राफ्ट जो पहले लीडर्स के लेवल पे उस पर बातचीत हो रही है, तो वो एक अजीबोगरीब तरह की डिप्लोमेसी।
हमने बहुत सारी नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड और फॉरेन अफेयर्स रिलेटेड पाकिस्तान खासकर वो बात की, लेकिन थोड़ा लाइटर स्टफ उस पर बात करते हैं कि उस समय आप कैसे PMO में डील करते थे। जैसे PR क्राइसिस हो गया, मीडिया क्राइसिस हो गया, जैसे एक खबर चलती थी कि वाजपेयी जी तो सिर्फ मुखौटा हैं, और वो भी शायद पार्टी या RSS के थ्रू ही किसी ने बोला था, वो लीक किया गया था। तो इस तरीके की चीज़ों से कैसे डील करते थे कि अब क्या करना है, ये कैसे डिसीजन होता है, अच्छा वाजपेयी जी बोलेंगे कि नहीं मुखौटा नहीं हो या क्या, मतलब किस तरीके से डिनाई करो तो भी मतलब फंस गए उसमें, या उसको एंगेज ही नहीं करना है उस तरीके की, क्योंकि और ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, और बहुत सारे PR क्राइसिस होते होंगे।
होते हैं और बहुत कुछ चलता है, और स्पेशली एक प्रधानमंत्री जो एक कवि भी थे, और वाजपेयी जी की खासियत ये थी कि वो कविता कई बार कुछ कविता में बात करते थे, मतलब गोलमोल बात करते थे और लोग उससे
अपना अपना इंटरप्रिटेशन,
अपना अपना अलग इंटरप्रिटेशन। तो हमारा मजाक था PMO में कि हमारा स्पष्टीकरण विभाग तैयार रहना चाहिए और बहुत ही एक्टिव रहना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने कुछ बोला, सडनली खबर चली वहां से, उसको एक रूप दिया गया कहीं पे कि प्रधानमंत्री ने तो ये बोल दिया। तो स्पष्टीकरण विभाग को तैयार रहना चाहिए कि आप जल्दी से क्लैरिफिकेशन निकालें कि मगर प्रधानमंत्री का मतलब तो ये था कि उन वो PMO की तरफ से एक स्पष्टीकरण जाता था। तो ये काफी इसका मजाक बन गया था। और एक उस समय ये गठबंधन की राजनीति थी, कोलिशन एक चल रही,
हर चीज आपको ध्यान से,
24 पार्टियां थी, कई लोग खफा हो जाते थे, खतरा था कि कोई अलायंस पार्टनर रूट किया तो वो निकल गया कि प्रधानमंत्री ने कुछ बोल दिया हमारे खिलाफ। तो स्पष्टीकरण, मजाक ये था कि स्पष्टीकरण विभाग को हमेशा तैयार रहना चाहिए।
तो आप स्पष्टीकरण ड्राफ्ट कर देते थे और फिर दिखाते थे उनको, या वो कहते थे अरे यार तुम देख लो।
हाँ, कई नहीं, उनसे चर्चा होती थी और फिर स्पष्टीकरण निकाला जाता था। मगर मेरे ख्याल से वाजपेयी जी का जो टेन्योर था 1998 से लेके 2004 तक, ये भारत के लिए एक बहुत फाउंडेशनल था। भारत की जो 21वीं सदी की जो दिशा है उसमें रखी थी। न्यूक्लियर पॉलिसी, हम न्यूक्लियर हुए, फॉरेन पॉलिसी की जो दिशाएं हैं वो आगे लेके गए एक अलग स्तर, एक अलग लेवल तक। मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार भी उन्हीं नीतियों को कई तरह से आगे ले गए।
इकोनॉमिक पॉलिसी और रिफॉर्म्स जो किए वो भी
इकोनॉमिक, और हाँ तो इकोनॉमिक रिफॉर्म, सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी एक तरह से नींव रखी थी 21वीं सदी के भारत की, और वो आगे ले गए और पिछले 10 साल में और भी आगे ले गए। और शायद अगर वाजपेयी जी इस समय होते तो वो भी इन्हीं नीतियों को आगे ले जाते, क्योंकि उन एक तरह से जो फाउंडेशन रखा था वो ही आगे बढ़ाया है।
जैसे आपने काम किया पीएमओ में और ये सब देखा जो मैंने कहा आप कि मुखोटा की जो बात है, जब आप काम करते थे उनके साथ तो आपको ऐसा लगता था कि उनका सर्वे सर्वा वो थे, मतलब फर्स्ट अमंग इक्वल्स जो बोला जाता है, या फिर मतलब बाहर से भी ऐसा लगता था कि मुखोटे वाली बात कहीं ना कहीं सच है?
नहीं, वाजपेयी जी का ये था कि ही वॉज अ कोलिजियल कंसेंसुअल प्राइम मिनिस्टर, एक आइडियली सूटेड थे एक कोलिशन को आगे ले जाने में, और उनके अपने व्यूज थे मगर सबके व्यूज सुनते थे, तो एक कंसेंसस को लेके आगे बढ़ने की उनकी आदत थी कि बोलते थे भाई क्या मत है इस बारे में। और कैबिनेट मीटिंग में, मैं हर कैबिनेट मीटिंग में बैठता था तो चारों तरफ लोगों को मौका देते थे बोलने का।
अच्छा।
हिज बिगेस्ट स्ट्रेंथ वाज ही वाज अ ग्रेट लिसनर, चुपचाप से वो सुनते रहते थे
और खुले मन से लोग बोलते थे,
और लोग खुले मन से बोलते थे। इट वाज अ वेरी डेमोक्रेटिक कैबिनेट, लोग अपनी अपनी बात मत रखते थे और अंत में वो बस बोलते थे ठीक है,
करते तो अपने
मतलब
मन के
आखिरी आखिरी जो बात जो अगर वो मान गए एक बार ठीक है बोला, मतलब उस पर आगे बढ़ दिए।
अच्छा।
तो एक बार वो सबकी बात सुन ली और एक बार फैसला किया तो आगे बढ़े। तो इसमें कई बार ये लगता था, और अपने विचारों को बदलने में कोई हिचक नहीं थी उनको कि ही इवॉल्व्ड एज अ पॉलिटिशियन, एज प्राइम मिनिस्टर, कि भाई ये हमने सोचा नहीं था ये ठीक बात है। So he would learn from his mistakes also.
अच्छा सर, कई नेता जो होते हैं जिनके साथ जैसे लोग काम करते हैं तो वो बहुत जल्दी से खुलते नहीं हैं, गार्डेड रहते हैं कि, और खासकर ब्यूरोक्रेट्स तो वो अपना ओपिनियन नहीं बताते, सुनते बहुत अच्छा हैं, दे आर वेरी गुड लिसनर्स, लेकिन अपने मन में क्या चल रहा है वो नहीं बताते हैं। तो वाजपेयी जी उस तरीके से कैसे थे?
उनके अपनी राय थी कई चीज़ों के बारे में, मगर ही वॉज वेरी ओपन, तो सुनते थे ज़रूर मगर कई विषयों में बिल्कुल मन साफ होता था उनका। कि कई बार मैंने उनको सुना है कि नहीं, इस विषय में मेरा मन साफ है, ये हम नहीं कर सकते, और वो लाइन बना देते थे। तो कई बार लाइन इस तरह से बनाई और साफ किया, और जैसे कि वो उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिकन्स वहाँ पे वेस्टर्न फ्लैंक पे हैं पाकिस्तान के, हमें कुछ इस तरह से नहीं करना चाहिए कि ईस्टर्न फ्लैंक को हम बिल्कुल अलग कर दें। तो उनकी समझ थोड़ी ब्रॉडर विजन की भी थी कि क्या हो रहा है दुनिया में, और स्पेशली विदेश नीति के मामलों में उनकी बहुत ज़्यादा समझ थी, क्योंकि एक अनुभव भी था और एक इंटरेस्ट भी था, और एक उनकी केमिस्ट्री भी बन गई थी लीडर्स के साथ, और भारत उभर के आ रहा था तब हाई टेबल पे उनके ज़माने में, और उनको बाहर के लीडर्स बहुत रिस्पेक्ट करते थे। बिल क्लिंटन, टोनी ब्लेयर, इस तरह के लीडर्स बहुत ही ज़्यादा उनकी उनका सम्मान करते थे और बहुत आदर से बात करते।
ऐसी कोई पॉलिसी या ऐसी कोई डिसीजन जो आपने, आप उसका पार्ट रहे हों जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे उस पीएमओ में, ऐसा क्या डिसीजन जो कुछ होता है ना कि एक पर्सनल बहुत अटैचमेंट होता है उस डिसीजन से, क्योंकि उससे हो सकता है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ हो, बहुत बड़े बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ हो, देश में कोई चेंज आया हो, आपको ऐसा कोई डिसीजन है, कोई पॉलिसी है इकोनॉमिक्स में या अदरवाइज जो आपको लगता है कि हाँ ये मतलब ये सेटिस्फैक्शन वाला काम था, मतलब इसमें मज़ा आया?
नहीं नहीं, उस समय तो बहुत सारे छोटे बड़े काम थे।
आपका फेवरेट?
आई हैव नो इल्यूजन्स दैट आई वाज अ फ्लाई ऑन द वॉल, मगर कई बार क्या होता है कि निजी सचिव के साथ बैठे हैं तो कई बार केवल मैं और प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं तो मुझसे पूछते थे अरे क्या करना चाहिए, तो उस समय मैं अपनी बात कह देता था कि
he just created another opinion, तो हाँ, हाँ।
और वो कोई भेदभाव नहीं करते थे कि ये जूनियर से ऑफिसर है, मेरे सेक्रेटरी है और मेरे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपनी बात कर देते थे उस समय और राय मांगते थे। तो कई बार मुझसे राय मांगी, कई बार इस तरह की बातों में, और मैंने उनको दी। एक एक जो फैसला था, एक छोटा फैसला जो मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, जो मैंने बोला कि उनकी कविता, जब वो बाहर जाते थे तो कविता लोग बहुत पॉपुलर हो रही थी और विदेशी नेता भी उनके काउंटर पार्ट्स उनकी किसी जंग ना होने देंगे या ऐसी कविता का कोई ट्रांसलेशन पढ़ लेते थे कहीं पे या उनको मिल जाता था। तो मगर कुछ अच्छे ट्रांसलेशंस नहीं थे उस समय। तो मैंने उनको बोला, सर ये तो आपका आपकी कविता को पूरा समझा ही नहीं, उन्होंने भाग बोल दिया, तो क्यों ना हम आपकी कविता अंग्रेजी में छपवाएं। तो उन्होंने बोला हाँ करो। तो फिर हमने एक मैंने वो प्रोजेक्ट शुरू किया और एक 21 पोएम्स नाम की किताब छपवाई, जिसमें हमने एक एक पवन वर्मा जी को रिक्वेस्ट किया कि वो उसका ट्रांसलेशन करें।
वो भी फॉरेन सर्विस में ही थे।
हाँ, और उनके साथ कई घंटे उस पे काम किया।
अच्छा।
तो वो किताब निकल के आई, तो फिर उसके बाद उन्होंने वो गिफ्ट करना शुरू करी, लोग मांगते थे उनकी किताब और वो काफ़ी सफल रही। तो फिर ये एक पहल करी थी, मगर छोटे छोटे इस तरह से कई
कोई नॉन पॉलिटिकल बातों पे भी आपकी चर्चा होती थी, ऐसे ही बैठे हुए हैं, मतलब पता नहीं कितना खाली टाइम मिलता होगा ऐसे बात करने का, लेकिन थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं उस तरीके से, तो
बिल्कुल। और
क्या फेवरेट टॉपिक्स पे कुछ?
खाने पीने का बहुत उनको फेवरेट टॉपिक था। तो अच्छा। मैं उनके साथ उनके कई बार जाता था लखनऊ में, उनकी कंस्टिट्यूएंसी में, और कई बार मुझे लखनऊ के मक्खन मलाई वाला जो मीठा है हाँ। वो खाना पड़ा, क्योंकि टेबल पे उनके साथ बैठे हैं, वो बोलते हैं मुझे अलाउड नहीं है, तुम खाओ इसको हाँ। तो मुझे जरा डबल
और बताओ फीडबैक
डबल खाना पड़ता था हाँ। तो कई ऐसे ऐसी बार वो काफी अलग अलग विषयों पे चर्चा करते थे, और ये खासियत थी कि एक बार टेबल पे बैठे तो वो खाने की बातचीत, और चाहे कितना भी बड़ा क्राइसिस चल रहा हो, छोटी छोटी बातों पे चर्चा कर सकते थे
लाइट करने के लिए
हाँ।
तो कितना मतलब व्यस्तता कितनी होती है, क्योंकि एक जैसे वाजपेयी जी तो 80 साल के हो गए थे जब वो प्रधानमंत्री से हटे, तो इतनी उम्र में इतनी व्यस्तता और 24 घंटे कभी भी कोई भी नींद भी नहीं पूरी होती है, कभी तो 2 घंटे सोना 3 घंटे सोना, तो कितना डिफिकल्ट होता है ये, कितनी व्यस्तता होती है एज अ प्राइम मिनिस्टर?
मेरे ख्याल से वाजपेयी जी का ये था कि वो एक स्विच ऑन स्विच ऑफ का उनका टैलेंट था।
अच्छा।
कि एक बार एक क्राइसिस आया, उससे आपने डील किया, उसमें आपने फैसले किए, फिर आप आगे बढ़े अगले क्राइसिस से बात करने की। और वो मेरे ख्याल से रात को आराम की नींद सोते थे, उनको ये चिंता की नींद नहीं सोते थे, और बहुत काफ़ी मेहनत करते थे अपनी उम्र के हिसाब से। ही वॉज अप सुबह सुबह भी बात हो सकती थी, रात को काफ़ी लेट तक वो पढ़ते थे। कई बार मैं निजी कार्यालय में उनके पास 11 बजे 11:30 बजे या कई कभी कभी कोई क्राइसिस हुआ तो उनको 1 बजे उठाना भी पड़ता था। तो
वो आपके ऊपर ही आती थी वो जॉब
कि खाली निजी सचिव को ही ये राइट दिया जाता है कि आप उनको उठाएं अगर क्राइसिस कुछ बड़ा है, कोई बड़ी बात।
कोई फॉरेन लीडर जो उनको उनके साथ उनका इंटरेक्शन हुआ और उनको लगा हो कि हाँ यार इस ये आदमी मेरे को अच्छा लगा मिलके?
बिल क्लिंटन के साथ उनका बहुत अच्छा
अच्छा
एक रिलेशनशिप रहा, क्योंकि क्लिंटन का एक बहुत ही पॉजिटिव रोल रहा था कारगिल क्राइसिस में,
तो ट्रस्ट बिल्ड हो गया,
एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ। और उसके क्लिंटन जब निकले अपने जॉब से, उसके बाद भी क्लिंटन आते रहे यहाँ पे और वाजपेयी जी से मिलते रहे। तो 4 जुलाई को आपको याद होगा बिल क्लिंटन ने 1999 में कारगिल का जो एंड गेम था नवाज शरीफ को बुलाया था वॉशिंगटन और उन पे जोर डाला था, कोअर्सिव डिप्लोमेसी करी थी कि वो कि क्लिंटन ने कि आप कारगिल से पाकिस्तानी फोर्सेस को विड्रॉ करें,
तो उनके साथ उनका थोड़ा ठीक था।
हाँ, उनके साथ काफ़ी अच्छा उनका रिलेशनशिप बना।
तो अभी वाले जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी आए थे कभी उनसे मिलने पीएमओ में या?
बहुत बार आते थे।
अच्छा,
मोदी जी उस समय प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी के शुरू में हिमाचल के लिए, तो हिमाचल में मनाली में जब प्रधानमंत्री का कार्यालय जाता था कुछ कई बार, 2-3 बार हुआ कि जाके 2 हफ्ते के लिए वो मनाली गए, तो मोदी जी काफी उस समय आते थे।
मनाली उस समय ठीक भी तो था, मतलब अच्छा था, इतने लोग नहीं जाते होंगे उधर।
हाँ, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब भी
वहाँ। हाँ, तब तो फिर वो फॉर्मल हो गया। एक बात आखिरी में मैं पूछना चाहूँगा, एक बात जो बोली जाती है कि वाजपेयी जी का के एंड में आते आते जैसे उनका जो टेन्योर था उसमें वो चीज़ें भूलने लगे थे, अल्जाइमर का शायद वो बताते हैं कि लोग उनको अल्जाइमर था शायद, और ये बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो ये बताते हैं। तो उनका जो शार्प मेमोरी था उस टाइप का, वो आपको लगा कि कोई डिफरेंस था, या हो सकता है डिफरेंस हो भी, उम्र भी काफ़ी हो गई थी, लेकिन क्या वो डिसीजन मेकिंग में कुछ फ़र्क दिखा आपको कि पहले थोड़े ज़्यादा एक्टिव रहते थे बाद में थोड़ा कम, तो आपको क्या कैसा लगा उस टाइप से?
देखिए, वाजपेयी जी का ये स्टाइल ये था, मुझे खास फर्क नहीं दिखा था। ये लोग कहते थे और अफवाहें उड़ाते थे दैट ही इज टू ओल्ड, या कुछ वो बीमार रहने लगे थे थोड़े, मगर माइंड काफी शार्प था। वाजपेयी जी का स्टाइल शुरू से ये था, ही वॉज अ विजनरी, बिग पिक्चर, बिग विजन मैन, कि मोटी मोटी इस दिशा में हमको जाना है और जो डिटेलिंग करनी है वो आप लोग करें। तो उनके एक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे ब्रजेश मिश्रा, वो एक प्रधानमंत्री कार्यालय जो था वो एक बहुत ही इफ़िशेंटली चलता था और बड़ी दिशा की जो उन्होंने संकेत दिया उसके अंदर डिटेलिंग करने वाले और लोग होते थे, एंड दैट इज़ द वे अ टॉप लीडर शुड बी, कि आप एक विजन दें और आपके पास ऐसी टीम हो जो उसको इम्प्लीमेंट कर सके, उसकी डिटेलिंग कर सके और उसको आगे ले जाए। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा मुद्दा नहीं था, मगर आखिरी एक साल में उनका ये साफ था कि वो दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते।
अच्छा,
इट वॉज ही वॉज वर्किंग ऑन अ लेगेसी, वो नहीं चाहते थे, ही न्यू ही वॉज not going to be prime minister after 2004.
Even if he wins.
मेरे ख्याल से ये उनके मन में साफ था।
तभी वो शायद जो इस्लामाबाद वाली जो आपने बोला एग्रीमेंट जो हुआ 2004 में।
हाँ, मगर वो केवल वो कारण नहीं था, कारण कई थे और काफी इसका आंकलन हुआ है। तो बेसिकली उनका वो पार्टी के लिए अगर कैंपेनिंग करना चाहते तो वो करने को तैयार थे, मगर मेरे ख्याल से वो फिर प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं थे।
तो जो ये 6 महीने पहले जो इलेक्शन बुलाया था,
हाँ,
इसमें इसका भी आपको पता है कुछ कि क्यों, क्या कारण रहा होगा, जो इंटरनल डिस्कशंस हुए होंगे?
तो ये इंटरनल फैसला, ये राजनीतिक फैसला था। 3 चुनाव जो हुए 3 प्रांतों में, जो
मध्य प्रदेश, राजस्थान और हाँ
और उसमें अच्छा नतीजा आया तो काफ़ी पार्टी के अधिकारियों को लगा कि आगे चुनाव को एडवांस करके फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल से वाजपेयी जी पूरे कन्विंस नहीं थे इस बारे में।
अच्छा,
मगर पार्टी में राय बनी तो एज अ कंसेंसुअल पर्सन ही से ठीक है, जो राय है उससे चलते हैं।
चलिए सर, इतना विस्तार में आपने बात किया, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस हैं, और आपका जो करियर रहा है पीएमओ में और फॉरेन सर्विस में, मैं कहूँगा कि बहुत ही एनरिचिंग और बहुत ही एनवियस मैं कह सकता हूँ कि कोई भी अगर फॉरेन सर्विस में है या कोई भी ब्यूरोक्रेट है उसका एक वो होता है कि जो पीएमओ में काम करो या इस तरीके की पोस्टिंग्स हों, जहाँ पे आपका पूरा वर्ल्ड व्यू और जो एक्सपीरियंसेस जो हैं जो आप सीखते हैं वो एक अलग लेवल पे होता है। तो आपको ये मौका मिला और आपने हमारे साथ शेयर किया इतना सारा चीज़ और ये बुक लिखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप रशिया में भी रहे काफ़ी साल और उस पर भी हम, मैं चाहूँगा कि कभी हम बाद में बात करें क्योंकि अभी बहुत कुछ चल रहा है रशिया यूक्रेन में, तो उस दिन उस पर कभी और दिन बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच सर इतना समय देने के लिए, यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू
थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत।
सेम है सर, थैंक यू।